दिन भर 19 फरवरी रविवार, आप सभी को निखिल रंजन का नमस्कार। मूसल के पश्चिमी हिस्से को दाइश के कब्जे से मुक्त कराने के लिए इराकी सेना ने शुरू किया बड़ा जंगी अभियान। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का मतदान खत्म, कुल 62% लोगों ने डाला वोट।
कुछ लोग के देखिए तो पहली बात तो जैसे होता है किसी का पहचान पत्र, मतलब किसी का यहाँ पे वोटर आया है किसी का नहीं आया, सबसे बड़ी समस्या जो लोग बनाते हैं।
दिल्ली धमाकों के पीड़ित पूछ रहे हैं, कोई तो बताए आखिर किसने किए बम धमाके। संडे दिन भर में आज खास मुलाकात फिल्म अभिनेता अरशद वारसी से। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 69 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 61.16% वोटिंग हुई। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक अंतिम आंकड़ा 63% तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में मतदान होना है। चुनाव नतीजे 11 मार्च को आएंगे। इराक की सेना के मुताबिक मूसल के दक्षिण में उन्होंने कई गाँवों को अपने अधिकार में ले लिया है। सेना शहर के पश्चिमी हिस्से को इस्लामिक स्टेट से मुक्त कराने के लिए अभियान में लगी है। तड़के शुरू हुए अभियान का उद्देश्य एयरपोर्ट पर अधिकार हासिल करना था। इराक की सेना के साथ मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक अभियान में कई हथियारबंद वाहन और हजारों की संख्या में सैनिक शामिल हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए भी मदद मुहैया कराई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने म्यूनिख में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में साझा समस्याओं के समाधान के लिए खाड़ी के अरब देशों के साथ संवाद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने कहा कि ईरान दुनिया में चरमपंथ का मुख्य प्रायोजक बना हुआ है, जब तक ईरान का रवैया नहीं बदलता उसके साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल है। ईरान के विदेश मंत्री ने क्षेत्र में हिंसा पर रोक लगाने के लिए साथ काम करने की बात कही है। जरीफ ने कहा, खाड़ी के देशों को विभाजन और तनाव की मौजूदा स्थिति से आगे बढ़कर वास्तविक क्षेत्रीय व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसकी शुरुआत क्षेत्रीय स्तर पर साझा हितों को लेकर बातचीत से हो सकती है। बातचीत का ये मंच विश्वास बहाली, सुरक्षा, चरमपंथ से मुकाबले समेत कई मुद्दों पर समझदारी बनाने में काम आ सकता है। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण, निवेश और पर्यटन में साझेदारी को भी बढ़ावा मिल सकता है। ये थे ईरान के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान दे मिस्तूरा ने कहा है कि सीरिया संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों में अमेरिका फिलहाल कहां खड़ा है वो इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। म्यूनिख में आयोजित सम्मेलन में मिस्तूरा ने कहा कि वो मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन सीरिया को लेकर अपने रणनीतिक उद्देश्यों पर बात कर रहा है। जनेवा में अगले हफ्ते शुरू हो रही शांति वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें यह जानकारी करने की कोशिश होगी कि क्या राजनीतिक बातचीत के लिए कोई जगह बाकी है। मलेशिया के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके सौतेले भाई की हत्या के मामले में वो कम से कम 4 अन्य संदिग्ध लोगों की तलाश कर रहे हैं। किम जोंग नम की मौत बीते हफ्ते हुई थी। पुलिस के मुताबिक 33 से 57 साल के बीच की उम्र के 4 संदिग्ध मलेशिया छोड़ चुके हैं। नेशनल पुलिस के उपप्रमुख नूर राशिद इब्राहिम ने बताया,
The three wanted by the police to assist us are...
पुलिस को जिन लोगों की तलाश है उनमें से एक 30 साल के री जी यू हैं। वो उत्तर कोरिया के निवासी हैं, उन्हें जेम्स के नाम से भी पुकारा जाता है। 2 अन्य संदिग्ध हैं जिनकी पहचान की जा रही है, उनकी तस्वीर स्क्रीन पर है, हम उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे नूर राशिद इब्राहिम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया से मिली खबरों के मुताबिक राजधानी मोगदिशु में हुए एक बम धमाके में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। धमाके के असर से 40 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक शहर के व्यस्त चौराहे पर विस्फोटक से लदी कार में धमाका हुआ, इससे आसपास की दुकानें गिर पड़ी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, उत्तर प्रदेश में आज तीसरे दौर का मतदान पूरा हो गया है और चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 62% मतदान हुआ है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले चर्चा मोसुल की, जहां इराकी सेना ने जंग छेड़ दी है। इराक की सरकारी सेना ने पश्चिमी मोसुल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। आज सुबह ऐलान जंग टीवी संदेश के जरिए खुद प्रधानमंत्री ने किया, जिसके तुरंत बाद सैकड़ों की तादाद में सैन्य गाड़ियों ने मोसुल के पश्चिमी हिस्से की ओर कूच कर दिया। अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के लड़ाकू विमान आसमान से उनकी मदद कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने आम लोगों की हिफाजत को लेकर चिंता जताई है।
इराक की सरकारी सेना ने मोसुल शहर के पश्चिमी हिस्से को इस्लामिक स्टेट के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमला शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में सैन्य गाड़ियां अमरीकी वायुसेना के साये में जिहादियों के ठिकानों की तरफ आज सुबह रवाना कर दी गईं। एक आला कमांडर ने बताया कि इराकी सेनाओं ने हमला शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर दो गांवों को मुक्त करा लिया। हमले का औपचारिक ऐलान इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने किया। प्रधानमंत्री अबादी ने टीवी पर जारी संदेश में कहा, हम जंगी कार्रवाई के एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान करते हैं। हम मोसुल के पश्चिमी हिस्से को आज़ाद कराने जा रहे हैं। हमारी सेनाएं लोगों को दाएश के खौफ से छुड़ाना शुरू कर रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर यारल्लाह ने एक बयान में कहा कि रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट की टुकड़ियों ने अतबा और अल लजागाह को आईएसआईएस के कब्जे से छुड़ा लिया। ये दोनों गाँव मोसुल हवाई अड्डे के ठीक पहले पड़ते हैं। इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले मोसुल के पूर्वी हिस्से को सरकारी सेनाएं पिछले महीने ही आजाद करा चुकी हैं। हालांकि सैन्य अधिकारियों का कहना है कि पतली पतली गलियों वाला पश्चिमी हिस्सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस इलाके में फंसे आम लोगों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। वहां से आ रही खबरों में इन लोगों की तादाद 650,000 तक होने की बात कही जा रही है। नागरिकों को हमले की चेतावनी देने वाले पर्चे पहले ही पश्चिमी इलाके में गिराए जा चुके हैं। इराक में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय राहत संयोजक लिजा ग्रेंडे कहती हैं,
Absolutely nothing is more important going into the campaign to retake Western Mosul.
पश्चिम मोसुल को वापस लेने के अभियान से ज्यादा जरूरी इस वक्त कुछ भी नहीं है। उन्हें यह निश्चित करना होगा कि जंगी कार्रवाई में मानवीय पहलू का ध्यान रखा जाए और इसमें शामिल सभी पक्ष इस बात की पूरी कोशिश करें कि आम लोगों को जंग से बचाया जा सके और वो जी सकें।
अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन टाउनसेंड ने रविवार को एक बयान में कहा था कि मोसुल दुनिया की किसी भी सेना के लिए एक कठिन लड़ाई होगी। इराकी सेनाओं ने मोसुल के पश्चिमी हिस्से को घेर लिया, जबकि अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है। सेना के सामने आईएस को उसके गढ़ से बाहर निकालने के साथ ही आम लोगों का भरोसा जीतने की भी चुनौती है। उनकी कोशिश है कि आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे, नहीं तो उन्हें आम लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।
पश्चिमी मोसुल को आज़ाद कराने के लिए इराकी सेना ने शुरू किया अभियान। ब्यौरा भेजा था बीबीसी संवाददाताओं ने और आपको सुनाया संदीप सोनी ने। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ।
दिनभर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और आज अब रुख करते हैं भारत का। भारत में आज सारी नजरें टिकी हुई थी उत्तर प्रदेश में, जहां आज तीसरे दौर का मतदान पूरा हो गया है। विधानसभा की कुल 69 सीटों के लिए 12 जिले के लोगों ने अपने वोट डाले। लखनऊ और आसपास के जिलों की ये वो सीटें हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी के लिए अहम बताया जा रहा है। यादव परिवार समेत कई मंत्रियों और दूसरे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 62% वोट पड़े हैं। पूरे ब्यौरे के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
राजधानी लखनऊ समेत सभी जगहों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। लखनऊ के कई बूथों का दौरा करने पर ऐसा लगा कि रविवार होने की वजह से कुछ लोगों ने सुबह सुबह ही इस काम को कर लेने और फिर बाकी दिन छुट्टी मनाने का प्लान किया था। राज्यपाल आवास के ठीक सामने बने मतदान केंद्र पर ऐसे ही कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई।
मुझे लग रहा है सबसे पहले आप ही हैं।
हमारे बूथ पर हमारा ही था वोट, पहला वोट।
आप इतनी सुबह? हाँ जी, वोट डालने का जोश है और कुछ नहीं, वोट के लिए ही आए हैं।
तो क्या सोच करके, क्या आपको लग रहा है, क्या इश्यूज हैं इस चुनाव?
इश्यूज तो नेशनल है और लोकल है, दो ही होते हैं, उन्हीं पर वोटिंग होती है।
आपने क्या सोच करके डाला?
दोनों ही।
आप दोनों लोग मुझे, मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ तभी से आप इंतजार कर रहे थे।
बिल्कुल।
तो
करीब दो घंटे पहले आप लोग आए होंगे।
जी हाँ।
जब आप लोग दो घंटा पहले आ सकते हैं तो हमें आने में कोई नहीं है, और पहले काम करके बाकी अपना काम निपटाएं।
क्या क्या इश्यूज हैं?
नहीं, हमसे
आप लोग
बिल्कुल इशू तो अपने स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर है, नारी सुरक्षा है, डेली लखनऊ क्या बाकी शहरों पे जो नारी उत्पीड़न की जो न्यूज आती है, हम लोगों को पढ़ के बहुत उसको दुख होता है।
मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है।
प्रॉपर इस सीट की अगर बात करें जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आपने वोट किया है, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या इशू है?
यहाँ तो ऐसे ठीक है, चूँकि VIP एरिया है तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन पूरे स्टेट की बात किया जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह के लिए अभी इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं।
इस बूथ पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी सपरिवार वोट डालने पहुंचे। लखनऊ के कई मतदान केंद्रों पर लोग मतदाता सूची को लेकर परेशान दिखे। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर एक मतदाता को तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही दिख रहा था।
कुछ लोग के देखिए तो पहली बात तो जैसे होता है किसी का पहचान पत्र, मतलब किसी का यहाँ पे वोटर आया है, किसी का नहीं आया। सबसे बड़ी समस्या है जो लोग बनाते हैं या जिनसे उनसे गुजारिश है कि अच्छे से लिस्ट तैयार करें ताकि मतदान अच्छे से हो।
तो क्या ऐसा इशू यहाँ आया है क्या कि कई लोगों के नहीं बने?
कई लोग के मतलब जो पर्ची है तो एड्रेस गलत है, तो ये है वो है, मतलब बहुत दिक्कतें हो जाती हैं।
आज जिन 69 सीटों पर मतदान हुआ उनमें इटावा, मैनपुरी और औरैया की वो सीटें भी शामिल हैं जिन्हें सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहां दो पक्षों के बीच झड़पों और शिवपाल यादव पर हमले की भी खबर आई, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी ने पुष्टि नहीं की। कानपुर समेत कुछ अन्य जगहों से भी छिटपुट झड़पों की खबरें आईं, लेकिन आम तौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान के बाद सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी जीत के दावे किए। लखनऊ में वोट देने के बाद बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा,
बहुजन समाज पार्टी नंबर वन पर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है।
वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भारी बहुमत से सपा कांग्रेस गठबंधन की जीत के दावे किए।
उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए और समाजवादी सरकार बने उसके लिए मैंने वोट दिया है। जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। जितनी सीटें मिली हैं उससे अगर ज्यादा बढ़ जाएंगी आप देख लेना जब परिणाम आएगा।
लेकिन फतेहपुर की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखिलेश यादव के इस अंदाज में कुछ और ही नजर आया।
मतदान करने के बाद मैंने टीवी पे देखा, सुबह चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे, जैसे बाजी हार चुके हैं। चुनाव के शुरू में अकेले जीतेंगे कहते थे, फिर कहते थे समझौता किया है इसलिए जीतेंगे, आज सुबह कह रहे थे हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी।
बहरहाल पार्टियां अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रही हैं और उनके ये दावे जनता की मर्जी पर टिके हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है इसे 82 साल के पूर्व विधायक वीरेंद्र दीक्षित ने मतदान के बाद रामप्रसाद बिस्मिल का एक शेर सुनाकर बताया।
आपने अगले बलबले हैं और अरमानों की भीड़, एक मर मिटने की ख्वाहिश इस दिले बिस्मिल है, वक्त आएगा बता देंगे अरे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
इस बार के चुनाव में और इधर हाल के जो कुछ चुनाव हुए हैं बीते सालों में, उसमें एक बात बहुत तेज़ी से उभर के आई है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए लोगों तक मन की बात पहुंचाने में सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एक बड़े और प्रभावी माध्यम के तौर पर उभरा है। राजनीतिक दल भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है, क्या इसके नुकसान भी हैं? सुनिए मानसी दास और समीर आत्मज मिश्र की पड़ताल।
भारत के 25 अरब लोगों में लगभग 70 करोड़ लोगों के पास फोन है। इनमें से 25 करोड़ लोगों की जेब में स्मार्टफोन है। हर महीने फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगभग 15 से 16 करोड़ लोग आते हैं। इन आंकड़ों को देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं कि राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया के इस्तेमाल को तवज्जो क्यों दे रही हैं। बीते कुछ सालों में चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका कितनी जरूरी हो गई है, ये लेंस प्रिंस अपनी किताब दी मोदी इफेक्ट में बताते हैं। वो कहते हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही समझ चुके थे कि लोगों तक सीधे पहुंचने के लिए सोशल मीडिया बेहद जरूरी है। उनके लिए ये केवल जुनून नहीं बल्कि उनकी जरूरत बन गया था। बीटेक कर रहे छात्र प्रज्ञान कहते हैं,
हम लोग युवा हैं और आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप बहुत ही तेजी से फैल रहा है, तो इस प्रकार अगर कोई नेता या कोई भी अपना प्रचार प्रसार व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू करता है तो उससे हम लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना लेते हैं, मतलब हम लोग जैसे लगता है कि उनसे फेस टू फेस बातें कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल संदेश पहुंचाने के लिए ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, कभी कभी इसका इस्तेमाल अपने खिलाफ बोलने वालों को शांत करने के लिए भी किया जाता है। अपनी किताब आईएमए ट्रोल में स्वाति चतुर्वेदी भाजपा के सोशल मीडिया कंट्रोल रूम के बारे में बताती हैं कि कैसे कुछ लोगों को ट्रोल करने, किसी फिल्म का बहिष्कार करने और चुने हुए नेताओं के खिलाफ ट्वीट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। लेंस प्रिंस भी मानते हैं कि कभी कभी तो मीडिया में लग रहे आरोपों के उत्तर भी ट्रोलिंग के जरिए दिए जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहने वाले छात्र राजीव कुमार सिंह कहते हैं,
कुछ बातों को या किसी संप्रदाय जाति की बातों को ज्यादा उभार के वोट लेने की कोशिश करने का प्रयास राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अपनी उपलब्धियों पर उनका जो है कम फोकस रहता है।
चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के संस्थापक जगदीप छोकर कहते हैं,
देखिए राजनीतिक पार्टियां ये समझती हैं कि सोशल मीडिया से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकती हैं और कम खर्चे में पहुंच सकती हैं, और किसी हद तक उनको शायद ये भी लगता हो कि इससे वो इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी है उससे थोड़ा सा शायद बच सकती है।
लेकिन सोशल मीडिया अपने आप में है दोधारी तलवार। जब एक नेता के समर्थकों ने दूसरे को पप्पू और जोकर कहा तो जवाब में दूसरे के समर्थकों ने पहले नेता को फेंकू और जुमलेबाज कहा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम जनता तक पहुंचने के लिए एक असरदार जरिए के रूप में उभरे सोशल मीडिया का राजनीतिक पार्टियां भरपूर लाभ उठा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे केवल फायदा ही पहुंचता है, कई बार इससे पार्टी की छवि को नुकसान भी पहुंचता है। लखनऊ में समीरात्मज मिश्र के साथ मानसी दास, बीबीसी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। दिल्ली की एक निचली अदालत ने राजधानी में 29 अक्टूबर 2005 को हुए एक सिलसिलेवार 3 बम धमाकों के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। 3 अभियुक्तों में से 2 यानी मोहम्मद रफीक शाह और हुसैन फाजली बरी कर दिए गए। 3रे अभियुक्त तारिक अहमद डार को सजा तो सुनाई गई, लेकिन बम धमाकों में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े होने के कारण। डार को 10 साल की सजा मिली, जेल में 10 साल गुजर जाने के कारण वो भी बरी हो गए, मतलब छूट गए। सरोजी नगर मार्केट वाले बम धमाके में किरण सलूजा के पति लालचंद सलूजा समेत 50 लोग मारे गए थे। उस दिन हुए धमाकों में ये सबसे घातक बम विस्फोट था। किरण सलूजा आज अपने पति की जूस की दुकान चलाती हैं। बाजार में उनसे मिलने पहुंचे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
इस समय मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूँ, ये एक भीड़ भाड़ वाला मार्केट, और ये जिस जगह पे मैं हूँ वो वही जगह है जहाँ पर 2005 29 अक्टूबर को ब्लास्ट हुआ था और उसमें 50 के करीब लोग मारे गए थे इस जगह पे। नमस्ते, आपको कब पता चला कि ये हादसा हुआ है और आप कहाँ पर थी उस वक्त?
मैं उस समय घर पे थी और घर पे मुझे पता चला कि सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुआ है, तो मुझे किसी रिलेशन वालों का फ़ोन आया कि सरोजनी नगर मार्केट में ब्लास्ट हुआ है। मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरे हस्बैंड से बात हुई है 4 बजे। तो जब मैंने टीवी ऑन करा तो उसमें आ रहा था, उससे पहले फ़ोन करके देखा शॉप पे तो फ़ोन कोई भी नहीं उठा रहा था। फिर पता चला कि बम ब्लास्ट हो गया है, जब टीवी ऑन करा तो उसमें शॉप का सीन आ रहा था, तो
अब तो समझ में आ गया कि आप ही की शॉप है।
शॉप देख के मुझे पता चला कि ये तो हमारी शॉप है, तो उस समय एकदम से सुन रह गए कि ये क्या हुआ। मुझे घर पे ही रात को 10:30 के बाद मुझे पता चला कि अब मेरे हस्बैंड नहीं रहे हैं।
अदालत का फैसला आया और 2 लोग उसमें बरी कर दिए गए, तो आपको क्या, आपकी प्रतिक्रिया उस वक्त क्या थी, क्या महसूस किया आपने अदालत का फैसला सुन के?
बाइज्जत बरी कर दिया गया कि उनका कोई दोष नहीं है, तो ये गलत हुआ, उनको तीनों को ही फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। पुलिस वालों ने कहा था कि वो पकड़े गए हैं, उस समय तो इतने सालों से तो मैं यही सुनती आ रही थी कि पकड़े गए हैं, जेल में हैं, पकड़े गए हैं, जेल में हैं। तो आज 12 साल के बाद वो कह रहे हैं कि वो नहीं है, तो कौन थे जिन्होंने ब्लास्ट करा? तो हमारे लिए तो 12 साल से हम लोग इसी ख्याल में थे कि आज उनको फांसी होगी, आज होगी। गलती हुई है कि वो सही जने को पकड़ नहीं पाए हैं, या कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो उन्होंने तहकीकात करी वो गलत हुई, जो उनको ये सज़ा सुनाई गई। तो मैं तो आशा करती हूँ कि इनको फांसी की सज़ा ही होए,
जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसको फांसी की सज़ा।
बिल्कुल, जो इसमें इन्वॉल्व हो उसको फांसी की सज़ा ही होए, क्योंकि हमें 12 साल हो गए हैं यही इंतज़ार करते करते। मेरे बच्चे उस समय छोटे थे, आज बड़े हो गए, तो मेरे तो दुनिया ही बिखड़ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस हादसे में चले गए, और हमें दुकान का भी, मेरे को संभालना और अपने बच्चों को भी संभालते हुए मैंने दुकान को भी संभाला, बच्चों को भी संभाला। तो आज मेरे बच्चे 14 और 15 साल के हैं, उस समय तो 2 और 3 साल के।
कितने बच्चे हैं?
2 है, एक बेटा और एक बेटी है।
तो उनको आप ही ने उस वक्त, उसके बाद से आप ही ने संभाला?
हाँ जी, उस समय वो 2-3 साल के थे जब ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल, दोनों का ही मैंने अपने बच्चों को प्यार दिया, माता का भी और पिता का भी। पर कहीं ना कहीं बच्चों को ही अपने पापा की कमी महसूस होती है, कि जब पेरेंट्स मीटिंग स्कूल में होती है तो फादर की याद आती है, बर्थडे या कोई फेस्टिवल उसमें अपने पापा की उनको याद आती है। पर मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, पर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा एहसास बच्चों को पिता का होता ही है।
दिल्ली में हुए बम धमाके की एक पीड़ित किरण सलूजा से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। और अब बात संडे दिन भर की। इस हफ्ते सिनेमा के पर्दे पर उतरी है अरशद वारसी की फिल्म इरादा। अरशद वारसी बिल्कुल अलग तरह की भूमिकाओं को यादगार बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में भी उनकी भूमिका कुछ हटकर है। संडे दिनभर में आज हम आपको अरशद वारसी से मिलवा रहे हैं। उनसे बात की है हमारी सहयोगी राखी शर्मा ने।
आपके किरदार इतने अलग कैसे रहते हैं, और इरादा में आप क्या नया किरदार निभा रहे हैं?
कहानी भी मैं सुन रहा हूँ तो 99% मैं कभी अपने कैरेक्टर को नहीं देखता तो वही मैं कह रहा हूँ अजीब इतफाक तो मैं कहानी देखता हूँ कहानी अच्छी है फिर जाए पता चलता है अच्छा मेरा कैरेक्टर अब देखते हैं इस कैरेक्टर को हम कैसे उसी के दायरे में रह के कैसे बना सकते हैं तो इसमें कुछ ऐसे किया हमने पुलिस वाला है तो बड़ा सीरियस था पुलिस वाला जो कहानी हमने सुनी तो बहुत सीरियस पुलिस वाला था तो कहीं कोई ये शहर जैसा ना हो जाए और फिल्म में जो बाकी के कैरेक्टर हैं उनके सबके मुद्दे हैं जिंदगी में, बहुत सीरियस कैरेक्टर्स हैं। जो बेसिक प्लॉट है पिक्चर का वो सीरियस सोशल मैसेज है, प्लस एक 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 हाँ तो एक ये सब चीज़ें के बीच में मैं चाहता था कि कहीं पे ये बंदा जो वहाँ का नहीं है, जो बाहर से आया है, एक दूसरी सोच के साथ आता है, इसमें फ़र्क तो होना चाहिए, ये उन लोगों की तरह नहीं होगा क्योंकि उस माहौल से नहीं है। बट द बेस्ट थिंग इज़ चलो इसको फ़ायदा उठाते हैं इस बात का, एंड लेट्स मेक इट मोर एंटरटेनिंग। तो उसका जो है केस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अजीब है और थोड़ा और प्लस क्या है कि जो एज अ कैरेक्टर ना उसको बुलाया इसलिए गया है क्योंकि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है, इसीलिए बुलाया गया उसको। तो उसके लिए उसका जो पूरा नजरिया है काम के तौर पर वो अलग है, उसको सिर्फ केस बंद करना, तो वो अपना टाइम पास कर रहा है, हफ्ते भर में किसी न किसी को पकड़ के वो अंदर कर देगा और केस बंद करके निकल जाएगा, उसका ये मोटिव। फिर अपने हालात बदलते हैं किस तरह।
आपने किरदारों की बात की तो मेरे जहन में आपके कुछ किरदारों के नाम आ रहे हैं, बालू, लक्की, टप्पी, फकीरा, बल्लू, टोटी, बब्बन, गूगल, सर्किट, जो भी करवा लो, मतलब इतने अजीब नाम। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये नाम स्क्रिप्ट में आपके पास आते हैं या आप बदल देते हैं?
इसमें से आई थिंक कुछ मैंने दिए, जैसे आई थिंक सर्किट मैंने दिया है, हम लोग बैठ के डिसाइड करते थे राजू के साथ तो ये निकल आया था, और टप्पी नहीं आया उसने, हमने नाम चेंज करके उसको चिप कर दिया था बिकॉज वो एक कंप्यूटर में बड़ा माहिर था। तो आई थिंक जो भी करवा लो बिकॉज इट वॉज अ फनी नेम, बट ये अक्सर ये नाम ये डायरेक्टर और राइटर्स ही देते हैं, दे कैन डिसाइड। और मुझे अक्सर तो जो मेरा नाम होता है फिल्म का वो मुझे याद भी नहीं होता, इसकी सिंपल लॉजिक है क्योंकि मैं अपना नाम कभी नहीं बुलाता फिल्म के नाम बाकी बुलाते समा। जैसे इस फिल्म में मेरा क्या नाम था, मैं जैसे 2 या 3 दिन पहले इंटरव्यू दे रहा था और अचानक
लेकिन ऐसे फनी नामों से पुकारा जाना कैसा लगता है? मतलब फिल्म तो खत्म हो जाती है लेकिन किरदारों के नाम जबान पर चढ़ जाते हैं।
बट नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, बट या इट इज क्वाइट फनी, अजीब अजीब से नाम है सारे, चोली नाम।
चलिए, अच्छा जॉली की बात आपने खुद ही कर दी। जॉली LLB आपने की थी जो उम्मीद से बढ़कर सराही गई। अब जॉली LLB 2 रिलीज हुई है जिसमें अक्षय कुमार हैं और जिसे भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपकी फोटो हमने देखी अक्षय के साथ, क्या वो एक प्रूफ था ये बताने का कि इस फिल्म का पार्ट नहीं होकर भी मैं खुश हूँ?
मैं कभी खफा नहीं था, ये तो आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे खफा खफा कर दिया। मैं कभी खफा नहीं था और मैं कभी होता भी नहीं हूँ खफा। तो आई थिंक कहीं भी न्यूज को अच्छा लगता है कि कुछ मसाला हो।
लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है किसी एक्टर के लिए कि जिस फिल्म में आपने काम किया और वो इतनी सक्सेसफुल हुई, उसी के सीक्वल का आप हिस्सा नहीं हो?
मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरे लिए एक फिल्म इज लाइक अ, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़्यादातर खुद फिल्म छोड़ देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार इसकी फिल्में आती नहीं ज़्यादा, मुझे ट्वीट आते तो आपकी फिल्म नहीं आती, आपकी फिल्म नहीं आती। पॉइंट ये है कि मुझे अपने घर पर वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों की जब छुट्टियाँ होती हैं तो मैं काम नहीं करता, तो जब वो घर पे रहते हैं मैं काम नहीं करता, अनलेस सो इट इज लाइक दैट। तो मुझे अगर फिल्म नहीं करना है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तो आप बहुत सारी स्क्रिप्ट सामने से मना कर देते हैं, क्या कोई ऐसी फिल्म भी रही जिसे छोड़ने का मलाल रहा?
नहीं, मैंने कोई ऐसी फिल्म जो बहुत अच्छी फिल्म है ना, वो आई विल डू इट। वो कहीं पर यू हैव टू लेट गो के चलो, जैसे अभी गोलमाल है, हम लोग मार्च में शुरू करेंगे और वो अक्टूबर तक चलेगी शुरू, तो उसमें सारी छुट्टियाँ वुट्टियाँ सारे बच्चों गैप होंगे, बट आई डू इट बिकॉज इट्स अ ग्रेट फिल्म, फन टू डू एंड ऑल दैट, सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। सो नहीं, और सुभाष से दोस्ती है, अक्षय से दोस्ती है, ये सब छोटे छोटे बात, 250 फिल्में बनती हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अर्शद, आपने कहा कि 20 साल हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में, तो इन 20 सालों में बहुत उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे। अवार्ड्स का जहां तक सवाल है, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल तक अवार्ड भी आपने जीते हैं, लेकिन बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड नहीं मिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा फिर आप मेरे सारे अवार्ड वाले बड़े नाराज होंगे, बट मैं इन अवार्ड्स को जरा भी अहमियत नहीं देता, बिल्कुल नहीं। तो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं, इट डजंट रियली मैटर।
तो एज एन एक्टर कभी ये चाहत नहीं होती कि मेरी शेल्फ में एक और नया अवार्ड जुड़ जाए?
मेरे घर पे मेरे पास इतने अवार्ड में जीत चुका हूँ जो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े थे, फिर मरिया ने निकाले कुछ और लगाए ऊपर, मतलब जबरदस्ती के लगा के एक सब सारे व्हाट्सएप के एक एक तो कम से कम लगा देते, चलो ये तो रख लीजिए, कुछ तो रखो। तो मैं ठीक है, आई थिंक हमारे यहाँ खुद अनफॉर्चुनेटली अवार्ड्स का कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जैसे एग्जांपल, कितने ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर का अवार्ड मिला, वो आज उनके पास एक फिल्म नहीं, काम नहीं, कहीं भी नहीं हो, तो क्या वैल्यू है? इट हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू। द ओनली थिंग यहाँ पे जिसकी वैल्यू है इज योर वर्क एंड योर बॉक्स ऑफिस पोजीशन। लोग आपको देखने आते हैं, आपका काम अच्छा है, दैट्स व्हाट मैटर्स। आई थिंक योर अवार्ड रादर देन एनीथिंग इज एक्चुअली योर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज योर अवार्ड, यू नो, आई थिंक सो। या दैट्स प्रीटी मच हाउ इट इज, एंड मुझे लगता है कि यू जस्ट मस्ट एज अ पर्सन, एज अ एक्टर, जस्ट डू अ गुड जॉब, अच्छा काम करो जितना हो सके, हर फिल्म के अंदर डू योर बेस्ट, एंड दैट्स अबाउट इट, शुड बी हैप्पी विद।
BBC से बातचीत के लिए अर्शद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे अर्शद वारसी और उनसे बात कर रही थी राखी शर्मा। और अब खेल समाचार स्टूडियो में आकर सुनाने जा रहे हैं आपको आदेश कुमार गुप्त।
जी निखिल, आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका में खेले जा रहे ICC विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले में पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम को आसानी से 7 विकेट से मात दी। भारतीय टीम के सामने जीत के लिए केवल 68 रनों का लक्ष्य था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और भारत ए के बीच खेला गया 3 दिवसीय अभ्यास मैच आज बिना किसी नतीजे के ड्रॉ रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को अब कितना पसीना बहाना पड़ेगा उन्हें पता चल गया, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने आज नाबाद दोहरा शतक जमाया। उधर IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का जो 10वां सीजन है वो 5 तारीख से शुरू होगा, लेकिन इसके लिए कल खिलाड़ियों की नीलामी कल होगी। और आज एक बड़ा कदम उठाते हुए पुणे ने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटा दिया और उनकी जगह अब टीम की कमान स्टीव स्मिथ संभालेंगे।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, तो प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 69 सीटों पर करीब 62% मतदान हुआ है। इराक की सेना के मुताबिक मूसल के दक्षिण में उन्होंने कई गांवों को अपने अधिकार में ले लिया है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने म्यूनिख में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में साझा समस्याओं के समाधान के लिए खाड़ी के अरब देशों के साथ संवाद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। BBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया वात्सल्य राय ने और आज स्टूडियो संभाला तिलक भाटिया ने। आपसे कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।